بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، اپنے آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم سورہ شمس کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا آشرے پراپت کیا ہے سورگی محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ سوگند ہے سوریہ کی اور اس کے پرکاش کی اور چندرما کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ دھرتی کو پرکاشت کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آکاش کی سوگند اور جس نے اسے اٹھایا، اور دھرتی کی اور جس نے اسے بچھایا، اور آتما کی اور جس نے اسے ٹھیک کیا، پھر اسے برائی اور بھلائی کا مارگ دکھا دیا، निश्चित रूप से वही सफल रहा जिसने अपनी अंतरात्मा को पवित्र बना लिया, और दुर्भागी हुआ जिसने उसे पापों से दूषित कर लिया। समूद जाति ने अपनी उद्दंडता के कारण पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें का सबसे बड़ा दुर्भागी उठ खड़ा हुआ तो अल्लाह के पैगंबर ने उनसे कहा, अल्लाह की ऊंटनी और उसके पानी पीने के स्थान का ध्यान रखना। किंतु उन्होंने उसे झुटला दिया और उस ऊंटनी की हत्या कर दी, तो उनके पालनहार ने उनके पाप के कारण उन्हें दंडित किया और उन्हें तथा उनकी बस्ती को मिट्टी में मिलाकर बराबर कर दिया, और उसे इस दंड के परिणाम का कोई भय नहीं।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 30 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है hindi@ws.irib.ir। आज मंगलवार है, दैमा की 28 और जमादुस्सानी की 15 और जनवरी की 18 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसको उपरांत कार्यक्रम अनमोल बातें प्रस्तुत किया जाएगा। अनमोल बातें के बाद आप सुनेंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम, उसके उपरांत हम आपको कार्यक्रम सुनाएंगे ईरान भारत संबंध, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पुरानी किस्से। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी बुधवार को रूस का महत्वपूर्ण दौरा करेंगे। प्रतिबंधों को हटाने के लिए ईरान और दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच वार्ता जारी। अंसारुल्लाह ने यूएई को सूचित कर दिया कि हमले को रोको, नहीं तो बड़े हमलों के लिए तैयार रहो। IIT के पूर्व छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद के नाम पत्र लिखा। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामिक गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी बुधवार को रूस का दौरा करने वाले, जिसके दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। तेहरान में रूस के राजदूत लोवान जागरियान ने ईरान से बात करते हुए ईरानी राष्ट्रपति के मॉस्को दौरे के बारे में कहा कि ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच वार्ता में आर्थिक और क्षेत्रीय मामलों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। रूस के उप संसद सभापति अलेक्जेंडर जुकोफ ने भी ऐलान किया है कि ईरान के राष्ट्रपति गुरुवार को नेशनल असेंबली ड्यूमा की बैठक को भी संबोधित करेंगे। दूसरी ओर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के राष्ट्रपति के मॉस्को दौरे को महत्वपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के आने जाने का मामला प्रभावित हुआ, किंतु अतीत के महीनों के दौरान रूसी और ईरानी राष्ट्राध्यक्षों ने कई बार टेलीफोन पर वार्ता की है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की होने वाली मुलाकात में ईरान और रूस से जुड़े बहुत से मामलों पर चर्चा होगी।
रूस के विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक गणतंत्र ईरान और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन वार्ता की खबर दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में बताया कि देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लायान से टेलीफोनी वार्ता में परमाणु समझौते JCPOA के बारे में विचार विमर्श किया। रूस के विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने तेहरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को हटाने के बारे में वियना वार्ता के दोबारा शुरू होने की परिधि में JCPOA के बारे में बातचीत की। ईरान के विरुद्ध अत्याचारपूर्ण प्रतिबंधों को हटाने के लिए आठवें दौर की वार्ता 27 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी, जिसके बारे में वार्ता करने वाले प्रतिनिधि मंडलों का कहना है कि प्रगति हुई है।
ईरान के विरुद्ध अत्याचार पूर्ण प्रतिबंधों को हटाने के लिए जारी वियना वार्ता की प्रक्रिया में 3 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के साथ ईरान के वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार की बैठक हुई। सोमवार की शाम स्थानीय समय के अनुसार कुलबर्ग होटल में ईरान के उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार अली बाकरी कनी और 3 यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ। इससे पहले बाकरी कनी और 3 यूरोपीय देशों के वार्ताकार आपसी सहमति के बाद शुक्रवार को परामर्श के लिए अपने अपने देश लौट गए थे। ईरान के उप विदेश मंत्री सोमवार को दोबारा वियना पहुंचे और वरिष्ठ वार्ताकार के स्तर पर दोबारा वार्ता शुरू हुई। शनिवार और रविवार को वियना में विशेषज्ञ स्तर की वार्ता हुई, जबकि रविवार को प्रतिबंध हटाने के बारे में वर्किंग ग्रुप ने वियना के कोलबर्ग होटल में चर्चा की, जिसमें ईरान और 4+1 के विशेषज्ञ शामिल हुए।
ईरान के इस्लामिक क्रांति की फोर्स IRGC के गुड्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कहानी ने ईरान के शिया धर्मगुरु और राजनेता मुक्तदा सदर से मुलाकात की है। बगदाद अलियोम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सदर धड़े के नेता मुक्तदा सदर से जनरल कहानी की मुलाकात में इराक में सरकार के गठन के लिए शिया राजनीतिक दलों के बीच सहमति के मुद्दे पर चर्चा हुई। सदर और कहानी ने संसद में अल अतार अल तनफीसी नाम से एक राजनीतिक गठबंधन के गठन पर भी सहमति जताई। बगदाद में सदर धड़े से निकट एक राजनीतिक सूत्र का कहना है कि इस नए गठबंधन का उद्देश्य इराक में सरकार का गठन है।
संयुक्त अरब इमारात की राजधानी अबूधाबी और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, मुसफ्फा तेल रिफाइनरी और अन्य रणनीतिक स्थानों पर यमनी सेना और अल हौसी आंदोलन के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मौत के बाद UAE और सऊदी लड़ाकू विमानों ने सना पर भीषण बमबारी की। याद रहे कि UAE सऊदी गठबंधन का हिस्सा है, जो मार्च 2015 से यमन पर हवाई हमले कर रहा है। सोमवार को UAE के अधिकारियों ने पहली बार स्वीकार किया कि अल हौसी आंदोलन ने हमलावर देश के काफी भीतर रणनीतिक लक्ष्यों पर बमबारी की है। UAE के खिलाफ यमन की जवाबी कार्रवाई में ADNOC तेल रिफाइनरी के पास स्थित 3 टैंकों में भीषण धमाके हुए। इस हमले में रिफाइनरी के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। UAE के केंद्र स्थित अबूधाबी एयरपोर्ट में भी यमनी ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस बीच यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने कहा है कि यमनी बलों ने UAE में रणनीतिक लक्ष्यों को ड्रोन विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों से सफलतापूर्वक निशाना बनाया है।
सोमवार को यमन के अल हौसी आंदोलन ने अबूधाबी और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और मुसफ्फा तेल रिफाइनरी जैसे रणनीतिक स्थानों पर ड्रोन विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2015 में सऊदी सैन्य गठबंधन द्वारा की, जिसमें UAE भी शामिल है, यमन के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के बाद से अबूधाबी के खिलाफ अल हौसी आंदोलन का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। यहाँ हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि यमन के अल हौसी आंदोलन ने UAE के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की है। गौरतलब है कि UAE ने 2019 में यमन युद्ध में अपनी भूमिका कम करने और युद्ध के मोर्चे से अपने सैनिकों की बात कही थी, लेकिन इस घोषणा के बावजूद UAE युद्ध में भरपूर तरीके से शामिल है और अंसारुल्लाह या अल हौसी आंदोलन के विरोधी लड़ाकों का समर्थन कर रहा है।
यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य ने संयुक्त अरब इमारात के अंदर अंजाम दिए गए यमन के तूफान नामक ऑपरेशन को एक ट्रेलर बताया है। मोहम्मद अल बुखैती ने दुबई और अबूधाबी हवाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को इमारात के अंदर जवाबी कार्रवाई का आरंभ बताते हुए कहा कि हम अबूधाबी को हमलों पर सचेत कर रहे हैं। उन्होंने अल मसीरा टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि इमारात ने यमन पर हमले जारी रखे, हालांकि हमने इस देश को यमन से धीरे धीरे पीछे हटने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने संयुक्त अरब इमारात को यमन में फंसा दिया और यमन की जंग में निराशा के बाद बहुत से प्रांत इमारात के हवाले कर दिए। यमन के जन आंदोलन अंसारुल्लाह के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि संयुक्त अरब इमारात ने यमन के बारे में अपने अनुमानों में गलती की और अब हमारी शक्ति और क्षमता अबूधाबी पर स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमन के तूफान ऑपरेशन के दौरान अहम स्थानों को निशाना बनाया गया और हमारी नजर में इससे भी ज्यादा अहम स्थान मौजूद हैं।
यमन की राजधानी सना पर सऊदी गठबंधन के हमलों में कम से कम 12 लोग हताहत और 11 अन्य घायल हो गए। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हमलावर सऊदी गठबंधन के बमबारी जहाजों ने सोमवार की शाम सना के मोइन कस्बे के लैबी मोहल्ले पर बमबारी की, जिसमें बच्चों और महिलाओं सहित 12 लोग हताहत और घायल हुए। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले से तबाह हुए घरों के मलबों में संभावित रूप से दबे लोगों की तलाश हो रही है और हमले जारी रहने की वजह से सहायता कार्य बाधित हो रहे हैं। दूसरी ओर यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने शबुवा प्रांत में ऑपरेशन के दौरान 90 से अधिक इमारती एजेंटों को ढेर कर दिया। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सेना और संयुक्त अरब इमारात के एजेंटों के बीच होने वाली झड़पों और मिसाइल हमलों में 90 से अधिक इमारती एजेंट मारे गए।
इसराइली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मारकर शहीद कर दिया। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को इसराइली सैनिकों और एक यहूदी कट्टरपंथी ने एक फिलिस्तीनी नौजवान पर यह आरोप लगाकर गोली मार दी कि वो वेस्ट बैंक के क्षेत्र में हमला करने वाला था। रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त फिलिस्तीनी को वेस्ट बैंक के बैत लहम और बैत फुज्जार क्षेत्र में गोली मार दी गई। फिलिस्तीन की शहाब न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि ज़ायोनियों ने दावा किया कि यह फिलिस्तीनी युवा ओश अस्तियून क्षेत्र के निकट चाकू से हमला करने का इरादा रखता था।
इसराइल के समाचार पत्र ने लिखा है कि उत्तरी अफ्रीका में तेल अवीव की गतिविधियों की वजह से मोरक्को और अलजजायर के बीच तनाव बढ़ गया है। फारस न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल के युद्ध मंत्री बेनी गांट्स के मोरक्को दौरे और दोनों पक्षों के बीच कुछ सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर हस्ताक्षर होने के बाद ही अलजजायर और मोरक्को के बीच तनाव बढ़ गया है।
भारतीय तकनीकी संस्थानों IIT के पूर्व छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखकर हाल ही में सामने आए कई गंभीर मुद्दों पर प्रधानमंत्री द्वारा चुप्पी साधने को लेकर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार अपने पत्र में उन्होंने हरिद्वार के धर्म संसद सुल्ली डील बुलीबाई और टेक फॉग एप्स पर प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी को गंभीर चिंता का विषय बताया। उक्त पत्र पर IIT के 1962 से 2020 के बीच के बैच के 100 से अधिक पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान समानता, बंधुत्व, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का प्रतीक है। आज हम स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं, लेकिन देश पर संकट के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और हम सिवाय उन्हें देखने के और कुछ नहीं कर सकते।
भारत के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि लगभग 1.5 लाख बच्चों ने कई कारणों से अपने माता पिता को खो दिया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार NCPCR ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2020 से अब तक कुल 1,47,490 बच्चों ने COVID-19 और अन्य कारणों से अपने माता पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोहाली में भगवंत मान के नाम का ऐलान किया है।
भारत में कोरोना की तीसरी लहर का जोर कमजोर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा वायरस करीब 2.38 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में ही 1.57 लाख लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में 7% की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 310 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है।
अफगानिस्तान में 5.3 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। सोमवार को अफगानिस्तान के पश्चिम में स्थित बादगीस प्रांत भूकंप के तेज झटकों से थर्रा गया। यह इलाका तुर्कमेनिस्तान से सटा एक सीमावर्ती इलाका है। प्रांतीय अधिकारियों का कहना है कि भूकंप से 26 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिलाएं और 4 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भूकंप से प्रभावित हुए दूर दराज के गांवों में अभी भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। अनमोल बातें।
कार्यक्रम अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में अख्तर अब्बास उपस्थित है, मेरा सलाम स्वीकार करें। दोस्तों, ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामनाई की अनमोल बातें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में हम इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मजबूत वो है जो अपने मन व इच्छाओं पर काबू पाले। पैगंबर इस्लाम के कथन में शदीद शब्द का आया है जिसका अर्थ होता है दृढ़ता। इंसान की मानसिक संरचना में मजबूती, इंसान के कर्म में दृढ़ता, अनेकेश्वरवादियों के मुकाबले में आस्थावान दृढ़ होते हैं। मोर्चेबंदी के लिए पुश्ते की तरह दृढ़ हो, प्रतिरोध कर सके, दूसरे के मुकाबले में अपनी रक्षा कर सके, मन की दृढ़ता व मजबूती का ये अर्थ है। कुछ धातु नर्म होती है, उसमें लोच होती है, आसानी से मुड़ जाती है, जबकि कुछ धातु कठोर होती है, दबाव के मुकाबले में प्रतिरोध करती है। जी हाँ, कुछ लोग मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं, ये दृढ़ता का अर्थ है। एक अच्छे इंसान की ये विशेषता है कि वो धातु की तरह ठोस व दृढ़ हो। ये समझने के लिए हम और आप धातु की तरह मजबूत हैं या नहीं, इसे विभिन्न अवसरों पर परखा जा सकता है। लेकिन इंसान की दृढ़ता को परखने का मुख्य मैदान इच्छाओं से संघर्ष का मैदान है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन का यही अर्थ है। ऐसा नहीं है कि आप एक ओर अपनी इच्छाओं के सामने झुक जाएं और दूसरी ओर खुद को धातु की तरह दृढ़ समझें, क्योंकि आप जैद, उमर और बशर के खिलाफ बहुत कठोरता दिखाते हैं। असल बात यह है कि अपने मन पर, अपनी इच्छा पर, अपनी वासना और अपने क्रोध पर काबू पाएं। ये अपने आप को परखने की कसौटी है। इससे पहले कि हम दूसरों को परखें, ये एक स्पष्ट मानदंड है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओं, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे इस्लामी गणतंत्र ईरान और चीन के महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सहयोग के समझौते की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम भारत में कोरोना महामारी की स्थिति के बारे में भी एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। राजनीतिक चर्चा में फ्रांस में करीब आ चुके राष्ट्रपति चुनावों पर भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो राजनीतिक चर्चा के विषय यही है। आरंभ करते हैं इस्लामी गणतंत्र ईरान और चीन के महत्वपूर्ण समझौते से। दोनों देशों के बीच ये महत्वपूर्ण समझौता व्यापक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समझौते पर दोनों देशों ने अमल शुरू कर दिया है। समीक्षा पेश कर रहे हैं सैयद मीसम।
ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाया ने पिछले हफ्ते चीन की अपनी यात्रा के दौरान तेहरान और बीजिंग के बीच 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन की घोषणा कर दी। इस रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी का कहना है, ऐसी स्थिति में कि जब अमेरिका ईरान पर अधिकतम दबाव बनाकर उसे दुनिया की अर्थव्यवस्था से काटने का प्रयास कर रहा है, दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक शक्ति से 25 वर्षीय साझेदारी के समझौते का कार्यान्वयन तेहरान की एक बड़ी रणनीतिक सफलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से इस तरह की साझेदारियों से जहां अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ता है, वहीं राजनीतिक संबंधों में भी एक संतुलन स्थापित होता है। इस स्तर के संबंधों का उद्देश्य रणनीतिक होता है, जो परस्पर हितों की सुरक्षा की गारंटी के अलावा बहुआयामी भी हो सकता है। ईरान और चीन के बीच ये बहुआयामी समझौता एशिया पर अधिक ध्यान दिए जाने की तेहरान की नीति के तहत किया गया है। इसके अलावा ईरान को हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की स्थायी सदस्यता प्रदान कर दी गई है और चीन पहले से ही इस संगठन का एक अहम सदस्य है। चीन को अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड को आगे बढ़ाने के लिए ईरान की बहुत जरूरत है और वो ईरान के रणनीतिक और भौगोलिक महत्व को अच्छी तरह समझता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में जितनी ईरान को इस तरह के समझौते की जरूरत थी, उतनी ही चीन को भी इसकी जरूरत थी। दूसरी ओर चीन ने ईरान के साथ ये समझौता करके क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान कर दी है, जो अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। 2015 में ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा था, वर्तमान परिस्थितियों के कारण स्वतंत्र देश आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं और ईरान और चीन के बीच 25 वर्षीय साझेदारी समझौता भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। इस मुलाकात में चीनी राष्ट्रपति शी ने कहा था कि चीन और ईरान की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं और इस यात्रा के दौरान हम 25 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर सहमत हो गए हैं। हम अपने रणनीतिक सहयोगियों के साथ सांस्कृतिक, शैक्षिक, तकनीकी, सामरिक और रक्षा के स्तर पर सहयोग के लिए तैयार हैं। इस व्यापक रणनीतिक साझेदारी का अमरीका के लिए संदेश स्पष्ट है। अब अमेरिका दुनिया में अपनी हठधर्मी नहीं चला सकेगा और ईरान को अलग थलग करने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
भारत में कोरोना वायरस की नई लहर फैली हुई है। अलबत्ता इसमें कुछ गिरावट तो जरूर देखी गई है, लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि कोरोना से संबंधित गाइडलाइनों का व्यापक रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। चुनावों और इस तरह के कार्यक्रमों के चलते लोगों की चिंता बढ़ रही है। ब्यूरो के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत में यद्यपि कोरोना की तीसरी लहर अपेक्षाकृत कुछ धीमी हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के इस महामारी से संक्रमित होने और कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में हिंदुओं के एक धार्मिक त्योहार के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और जुलूस निकाला। क्षेत्रीय प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद ये धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कर्नाटक में भी जहां कोरोना पॉजिटिविटी रेट 12.45% है, हर प्रकार की रैलियों और जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगी है। भारत के एक दूसरे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी AIADMK के संस्थापक MG रामचंद्रन के जन्म दिवस के अवसर पर भीड़ जमा हुई, जहां उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है और राजनीतिक दल अपने चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना की भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में भी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जहां भाजपा छोड़कर सपा में आए नेताओं का स्वागत किया गया। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के ऐसे कार्यक्रमों का संज्ञान लिया है और उनसे जवाब मांगा है। मुंबई में भी, जहां कोरोना का प्रभाव सबसे अधिक है, दादर बाजार में कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और लोग निर्भय होकर बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। ये ऐसी स्थिति में है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 310 कोरोना रोगियों की मौत हो गई है। भारत में इस समय 17,36,000 से अधिक कोरोना रोगियों का उपचार हो रहा है और पॉजिटिविटी रेट 14.43% है। राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण जारी है और अब तक पूरे भारत में 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव करीब आ चुके हैं और दूसरी ओर कोरोना के हालात भी बने हुए हैं। इस बीच अलग अलग दलों के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। पेरिस से शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
फ्रांस के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल 80 दिन ही बाकी बचे हैं। इस दौरान वहां की विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों को तरह तरह की चुनौतियों का सामना है। जिन लोगों ने फ्रांस में अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके बारे में मैक्रा के नकारात्मक बयान के बावजूद अब भी सर्वेक्षणों में वे सबसे ऊपर है। हालांकि लोगों के लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो स्पष्ट नहीं है। सर्वेक्षण बहुत विरोधाभासी हैं, सारी चीजें अस्पष्ट लग रही हैं। बचे हुए समय में बहुत सी चीजें बदल भी सकती हैं। राष्ट्रीय मोर्चा की मैरी लोपेन और रिपब्लिकन के प्रत्याशी वैलेरी पेक्रेस मैक्रा के कड़े प्रतिस्पर्धी अब भी बने हुए हैं। राष्ट्रपति पद के एक विवादित प्रत्याशी एरिक जेमोर अब सर्वेक्षणों में फिसल कर चौथे नंबर पर आ पहुंचे हैं। इप्सो नामक सर्वेक्षण संस्था के प्रमुख जेन फ्रांसो का कहना है कि अभी तक एक तिहाई वोटरों ने अपने दृष्टिगत प्रत्याशी के बारे में मन नहीं बनाया है। इस समय लगभग 35% फ्रांसीसी मतदाता अपने प्रत्याशी के बारे में शंकाग्रस्त हैं। ये स्थिति वामपंथियों के बीच बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। फ्रांस के चुनावी कानून के हिसाब से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के पास अब 2 महीने का समय है कि वे इस दौरान सारी आवश्यक कानूनी कार्रवाइयां अंजाम दे सकें ताकि उनकी पुष्टि की जाए। ये विषय अधिकांश प्रत्याशियों विशेषकर एक्जिमोर के लिए गंभीर मुद्दा सिद्ध हो रहा है। एरिक जोमोर ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी कानून को कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी बहुत ही विध्वंसक भी सिद्ध हो सकती है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव का पहला चरण 10 अप्रैल को आयोजित होगा जबकि दूसरा चरण 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री कल इस देश के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के दौरान वे फ्रांस में फिर से बढ़ रहे कोरोना के प्रभाव के दृष्टिगत चुनाव आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्यों की बैठकर गंभीर समीक्षा करेंगे। पेरिस से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ईरान भारत संबंध, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम कुरानी किस्से।
ईरान भारत संबंध।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भारत संबंध की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें। पिछले कार्यक्रम में हमने ईरान भारत संबंधों पर अमेरिका और ज़ायोनी शासन के प्रभाव का जायजा किया था। आज के कार्यक्रम में हम ईरान भारत संबंधों के बारे में थिंक टैंक्स और टीकाकारों के विचारों के बारे में बताएंगे।
ईरान भारत संबंधों का गहरा असर चूंकि पूरे इलाके पर पड़ सकता है, इसलिए हमेशा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स की इस पर तवज्जो रही है। दोहा स्थित अमेरिकन ब्रुकिंग्स थिंक टैंक एशियाई देशों के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक संबंधों के महत्व और फायदों के बारे में ये विचार रखता है कि भारत पश्चिमी एशिया के देशों, विशेष रूप से फारस की खाड़ी के तटीय देशों के साथ बहुत पुराने और ख़ास स्ट्रेटेजिक संबंध रखता है। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत पश्चिमी एशिया को व्यापारिक भागीदार इलाके की नज़र से देखता रहा है। दो कारकों, एनर्जी और प्रवासी कार्यबल की इस भागीदारी में बहुत बड़ी भूमिका रही है।
बुकिंग थिंक टैंक में इंडियन प्रोजेक्ट की डायरेक्टर तानिवा मैडन कहती है कि ईरान भारत संबंधों की बेहतरीन परिभाषा ये की जा सकती है कि दोनों देशों के संबंध बहुत ही पेचीदा हैं। भारतीय राजनेता खुलेआम ईरान भारत सांस्कृतिक और सामाजिक समानताओं पर जोर देना पसंद करते हैं, जबकि अमेरिका में विशेष रूप से प्रशासन से बाहर के हलकों में ईरान से भारत को होने वाले हर निर्यात पर गहरी नजर होती है। विश्लेषक का कहना है कि भारत की ऊर्जा की जरूरत इन संबंधों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय भारत ऊर्जा के इस्तेमाल की मात्रा की दृष्टि से दुनिया में चौथे नंबर पर है और अनुमान है कि बहुत ही जल्द तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत अपनी जरूरत की ऊर्जा का बहुत छोटा सा भाग देश के भीतर तैयार कर पाता है, शेष के लिए उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। गुजरते समय के साथ भारत की ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बढ़ने का अनुमान है। भारत ने प्रतिबंधों की वजह से ईरान से तेल का निर्यात बहुत ही तेजी से कम कर दिया है।
ऊर्जा के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने की भरपूर क्षमताओं की वजह से भी भारत ईरान पर गहरी नज़र रखता है। ईरान पर लगी पाबंदियां भी शायद कारण बनी है कि भारत अलग प्रारूप में ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा है। भारतीय कंपनियों को ये सहूलत हासिल है कि वो ईरान से तेल खरीदें और उसकी कीमत रुपए में अदा कर दें, जबकि ईरान अपने ज़रूरत का सामान भारत से आसानी से खरीद सकता है। इस तरह दोनों देशों के व्यापार की अहमियत बढ़ती जा रही है। भारत ईरान की चाबहार बंदरगाह में निवेश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए वो ईरान के रास्ते से एक कॉरिडोर बनाकर मध्य एशिया के देशों तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए नई दिल्ली को इस परियोजना में खास दिलचस्पी है।
ईरान के स्ट्रेटेजिक मामलों में थिंक टैंक तबईन का कहना है, ईरान के चार महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक भारत है। ईरान तेल की सप्लाई करने वाले सबसे प्रमुख देश के रूप में भारत के लिए महत्व रखता है। जब अमेरिका परमाणु समझौते से निकल गया और उसने ईरान पर दो चरणों में भारी प्रतिबंध लगा दिए, तो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ईरान और भारत के बीच बड़े पैमाने पर होने वाले व्यापार के दृष्टिगत अमेरिका की कोशिश थी कि भारत धीरे धीरे ईरान से तेल खरीदना कम करते पूरी तरह से बंद कर दे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भारत यात्राओं का एक प्रमुख एजेंडा यही हुआ करता था। भारत ने धीरे धीरे ईरान से तेल खरीदना तो बंद कर दिया, लेकिन ये तय है कि दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है। भारत यह भी महसूस कर चुका है कि अमेरिका अपने एजेंडे के लिए नई दिल्ली का इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके जवाब में जहां जहां भारत को अमेरिका की मदद की जरूरत पड़े वहां अमेरिका मौजूद हो। अफगानिस्तान की मिसाल बिल्कुल सामने है। अमेरिका की अफगानिस्तान योजना से भारत के सारे समीकरण अस्त व्यस्त हो गए।
ईरान के पास दुनिया का पुष्ट 12% तेल भंडार है। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग ईरान और भारत को एक दूसरे के बहुत करीब करने वाला फैक्टर है और ये दोनों देशों के आपसी संबंधों में मूल स्तंभ का दर्जा रखता है। भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेजी से वहां आगे बढ़ी है, शहरीकरण का रिवाज बढ़ा है, आम नागरिकों के जीवन स्तर में बेहतरी आई तो ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ी और ऊर्जा के लिए भरोसेमंद तथा स्थायी स्रोत हासिल करना भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी चुनौती है। भारत की नीति निर्धारकों को ये मालूम है कि ऊर्जा स्रोतों में विविधता बहुत ही जरूरी है क्योंकि इससे ऊर्जा की गारंटी मिल सकती है। वर्ष 2018 में ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश था।
भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पोजीशन हासिल करे और दूसरी उसे ऊर्जा की गारंटी भी हासिल रहे। इसके लिए उसका ध्यान पश्चिमी एशिया के इलाके पर लगी रहती है। इन लक्ष्यों के लिए भारत के लिए जरूरी है कि इस इलाके के देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हो और हालात को देखते हुए संतुलन बनाने पर बहुत अधिक ध्यान दे। भारत को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ईरान एक बड़ी क्षेत्रीय ताकत है जिसका इलाके में बहुत तेजी से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान की ताकत और भी खुलकर सामने आई है।
थिंक टैंक तबीन का कहना है कि भारत वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन बढ़ाने के सपने देख रहा है। इसके लिए भारत के पास एक बड़ा हथियार इस देश की बढ़ती व्यापारिक क्षमताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में किसी भी देश की पोजीशन तभी मजबूत होती है जब उसे अन्य देशों में आसान पहुंच हासिल हो। दूसरे देशों तक पहुंचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहां तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता मौजूद हो। मध्य एशिया के देशों को देखा जाए तो वहाँ ऊर्जा के अच्छे स्रोत भी हैं और साथ ही भारत के उत्पादों के लिए बहुत अच्छा बाजार भी है, लेकिन चूंकि भारत की अफगानिस्तान से कोई सीमा नहीं मिलती इसलिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के अन्य देशों तक पहुँचने के लिए उसके पास पाकिस्तान या ईरान का ही रास्ता बचता है। चूंकि पाकिस्तान के साथ भारत के गहरे मतभेद हैं इसलिए सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच का सबसे अच्छा रास्ता ईरान ही है। चाबहार बंदरगाह तथा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इस संदर्भ में ईरान और भारत के सहयोग के दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। भारत ने हालिया वर्षों में इन दोनों प्रोजेक्टों में अपनी गहरी रुचि दिखाई है।
भारतीय थिंक टैंक्स की बात की जाए तो उनके विचार में भारत विकासशील देश है जिसके ईरान के साथ संयुक्त और पारस्परिक हित हैं। भारत की कोशिश है कि ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिट क्षेत्र में ईरान से उसका सहयोग विस्तृत है, मगर भारत अपनी इस दिलचस्पी के बावजूद आगे इसलिए नहीं बढ़ सका कि उसके सामने रुकावट है। भारत के सामने सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका है। अमेरिका ने ईरान से व्यापार और सहयोग करने वाले देशों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने व्यापार और सहयोग जारी रखा तो उन्हें भी अमेरिका के प्रतिबंधों का निशाना बनाया जा सकता है।
इस तरह अमेरिका ने ईरान से व्यापार में साझेदारी करने वाले देशों को दूर किया है। भारत
ने अमेरिका से गहरे रिश्ते स्थापित किए हैं। पिछले दो दशकों में इन रिश्तों में तेजी से गहराई और व्यापकता पैदा हुई है, मगर इसके साथ ही भारत की नीतियों पर अमेरिका की नीतियों का असर भी बढ़ा है। अब जहां तक ईरान से भारत के संबंधों का विषय है, तो इस मामले में भारत अगर अपनी ऊर्जा की जरूरतों पर नजर रखता है, स्वाधीन विदेश नीति की फिक्र करता है, तब तक वो नई दिल्ली तेहरान सहयोग के मार्ग में अमेरिका को बहुत ज्यादा दखल देने की अनुमति नहीं देगा, और अमेरिका का दबाव होते हुए भी वो ईरान से संबंधों को बढ़ा सकेगा।
इस समय भारत को इस बात की चिंता है कि ईरान में जिन परियोजनाओं में उसने निवेश किया है, कहीं धीरे धीरे वह उसके हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अमेरिका के दबाव की वजह से भारत इन परियोजनाओं पर उचित गति से निवेश और काम नहीं कर पा रहा है। और जाहिर है कि ईरान के लिए यह संभव नहीं है कि वह बहुत लंबे समय तक इंतजार करता रहे कि परियोजना पूरी हो। भारत के लिए अभी ये मौका है कि ईरान से संबंधों के मामले में ठोस और दीर्घकालीन फैसले करे और हर किस्म के हालात में जारी रहने वाला एजेंडा तैयार करे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। قرآن قصے
دوستو، کارکرم قرآن قصے کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ کارکرم میں سورہ یوسف کی تیسری آیت کے بارے میں چرچا کریں گے۔
अज्ञानता के काल में जब लोग अपने दैनिक कामों से फुर्सत पाते थे, तो वे किसी एक स्थान पर इकट्ठा होकर मनोरंजन किया करते थे। ऐसे में हर एक का ये प्रयास रहता था कि वो इस महफिल को जहाँ तक हो सके आकर्षक बनाए रखे। एक स्थान पर जमा होने वालों में कोई शेर पढ़ता तो कोई कहानी सुनाता, तो कोई अपने पूर्वजों की प्रशंसा में भाषण देता था। जिस जमाने में कुरान नाजिल हुआ था, उस जमाने में अरब जगत, विशेषकर मक्के में अलंकृत भाषा और वाक पटुता अपने चरम पर थी। शेर कहने और भाषण देने में उस समय के अरब बड़ी दक्षता रखते थे।
इस्लाम के आगमन से पहले अज्ञानता के काल के अरब अपनी कविताओं को ओकास नामक बाजार में लाकर पढ़ा करते थे। उस काल में कबीलों के बाजार विस्तृत मैदानी क्षेत्र में होते थे। बाजार के लिए ये शर्त थी कि एक तो वो खुले मैदान में हों और दूसरे वो दूर से दिखाई दे। उकास नामक बाजार में ये सारी बातें पाई जाती थीं। यही कारण है कि अज्ञानता के काल में उकास बाजार को विशेष ख्याति प्राप्त थी। इस बाजार में रोम, ईरान, भारत और चीन की वस्तुएं मौजूद होती थीं। ये सारी चीज़ें एक ही समय में अरब के किसी भी बाजार में नहीं पाई जाती थीं। ओकास बाजार में वस्तुओं के साथ ही गुलामों की भी बिक्री होती थी। یہ بازار ہر سال حج سے پہلے ذکادہ کے مہینے میں لگتا تھا اور بہت بڑی سنکھیا میں لوگ اس میں آتے تھے۔
ان ساری باتوں کے باوجود جس چیز نے اوکاز بازار کو کھیاتی پردان کی تھی وہ وہاں پر پائی جانے والی وستوئیں نہیں تھیں، بلکہ وہاں پر آیوجت ہونے والی سانسکرتک سنگوشٹھیاں تھیں۔ وہاں پر اگیانتا کے کال کے بڑے بڑے کوی اور ساہتیکار آ کر اپنے کاوی کو پیش کرتے تھے، وہ کویتائیں پڑھتے اور بھاشن دیا کرتے تھے۔
یہ لوگ اپنے عرب کے اتہاس، اپنے قبیلے کی تعریفیں، قبیلے کے پروجوں کی پرشنسا آدھی کو کویتاؤں کے مادھیم سے پیش کرتے تھے تاکہ دوسرے قبیلوں والوں کو ان کے بارے میں پتا چلے۔ وبھن قبیلے والے اپنے قبیلے کے کوی کو اوکاس بازار میں لا کر پیش کرتے اور وہ کویتائیں پڑھ کر دوسروں کو یہ بتانے کا پریاس کرتے تھے کہ ان کا قبیلہ اور قبیلے والے کیسے ہیں۔ اگر کسی شاعر کا شعر سب سے اچھا ہوتا تو اس کے شعر کو کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔
کویتائیں پڑھنے اور بھاشن دینے کے ساتھ ہی اوکاس کے بازار میں دھرم کے پرچار کا بھی ماحول تھا۔ وہاں پر اپدیشک اپدیش دیا کرتے تھے۔ اس بازار میں سنیاسی بھی آ کر اپنی باتیں پیش کرتے تھے۔ عیسائی اور یہودی دھرم کے پرچارک بھی اپنے دھرم کا پرچار اوکاس بازار میں آ کر کرتے تھے۔ کہانیاں سنانے والے یہاں پر آ کر دوسرے دیشوں کے بارے میں قصے سناتے تھے جسے لوگ بہت ہی دھیان سے سنتے تھے۔
اگیانتا کے کال میں عرب جگت میں ایک دکش وکتا کا بہت مہتو تھا۔ اگر کسی قبیلے میں کوئی دکش وکتا ہوتا تو وہ اس قبیلے کے لیے بہت ہی گورو کی بات ہوتی تھی۔ اپنے قبیلے میں کسی دکش وکتا کے ہونے پر قبیلے والے بڑے گرو سے دوسرے قبیلے والوں کو بتاتے تھے کہ ان کے یہاں ایک دکش وکتا موجود ہے۔ اس بات کا مہتو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جوان وواہ کے لیے کسی قبیلے میں گیا۔ لڑکی والوں نے معلوم کیا کہ لڑکے کے پاس کیا ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میرے پاس سمپتی نہیں ہے۔ لڑکے کے ساتھ آنے والوں نے بتایا کہ اس کے پاس سمپتی تو نہیں ہے لیکن اس کے قبیلے میں ایک دکش وکتا موجود ہے۔ وہ اپنے فن میں اتنا ماہر ہے کہ گھنٹوں بھاشن دینے کی کشمتا اس کے بھیتر پائی جاتی ہے۔ اسی بات کے کارن لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کا وواہ اس لڑکے سے کر دیا جس کے قبیلے میں ایک دکش وکتا موجود تھا۔
اس سمے میں عرب جگت میں کہانی اور قصے سنانے کی بھی رسم تھی۔ وہ لوگ کسی ایک استھان پر آ کر جمع ہو جاتے اور پھر گھنٹوں کہانی سنانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سمے ایران کے کتھا سنانے والوں کو وشیش خیاتی حاصل تھی۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ ایرانی ویاپاری وہاں پر آئے ہیں تو ان سے کہانیاں سننے کے لیے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں کو ایرانی کہانیاں بہت پسند آتی تھیں۔
جب اسلام کا ادے ہوا تو عربوں کے بیچ قصہ گوئی یا کہانی سنانے کی پرتھا کم ہوتی گئی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالپنک کتھاؤں کے استھان پر پوتر قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اس کے باوجود اب بھی بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ پراچین کال کے قصے ان کو سنائے جائیں۔ اس پرکار کے لوگ پیغمبر اسلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرانے زمانے کے لوگوں کے بارے میں ہمیں کہانیاں سنائیں۔
جس سمے لوگ پیغمبر اسلام سے پراچین کال کی کہانیاں سنانے کی مانگ کر رہے تھے اسی سمے سورہ یوسف کی تیسری آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں ایشور کہتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کر کے یوسف کی داستان کو، جو سب سے اچھی داستان ہے، تم کو بتایا۔ نشچت روپ سے تم اس سے پہلے ان باتوں سے اپریچت تھے۔
حضرت یوسف کی داستان کو سب سے اچھی داستان بتایا گیا ہے کیونکہ اس کا انت سکھد ہے۔ اس انت میں یوسف کو حکومت ملتی ہے، ان کے بھائی توبہ کر لیتے ہیں، باپ کو آنکھوں کی روشنی مل جاتی ہے۔ جس دیش میں ورشوں سے سوکھا پڑا ہوتا ہے وہاں کا سوکھا سماپت ہو جاتا ہے اور انتتہ ہر اور خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ پوتر قرآن کے کچھ ویاکیاکاروں نے کہا کہ حضرت یوسف کی کہانی کو اس لیے احسن القصص کہا گیا ہے کیونکہ اس کہانی میں سچے پریم، جیل، آزادی، سوکھا، ہریالی اور انتتہ خوشی کی بات کہی گئی ہے۔ تتو درشتا کی اور جھکاؤ رکھنے والے قرآن کے کچھ ویاکیاکاروں نے کہا ہے کہ اس کو سب سے اچھی کہانی کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے سب سے مہتوپورن کیریکٹر حضرت یوسف ایک اچھے انسان ہیں جو سب کے لیے بھلائی چاہتے ہیں۔
اس کہانی میں حسد رکھنے والوں کے انجام کو بہت اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں شڈینتروں کے وفل ہونے کو دکھایا گیا ہے، تقوی کے مہتو کو درشایا گیا ہے۔ پوتر قرآن کے ایک جانے مانے ایرانی ویاکھیاکار آیت اللہ جوادی آمولی اس کی ویاکھیا کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت یوسف کی کہانی کی شیلی کہانی سنانے کی سب سے اچھی شیلی ہے، قرآن تقوی کو سب سے اچھی پونجی بتاتا ہے۔
تو دوستو کارکرم کا سمے سماپت ہوتا ہے، انومتی چاہتے ہیں۔
دوستو آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی بدھوار کو روس کا مہتوپورن دورہ کریں گے۔ پرتبندھوں کو ہٹانے کے لیے ایران اور دنیا کی بڑی شکتیوں کے بیچ وارتا جاری ہے۔ انصار اللہ نے یو اے کو سچیت کر دیا، حملے روکو نہیں تو بڑے حملوں کے لیے تیار رہو۔ آئی آئی ٹی بھارت کے پورو چھاتروں نے پردھان منتری نریندر مودی اور راشٹرپتی رام ناتھ کووند کے نام پتر لکھا ہے۔ دوستوں ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریہکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.